दीदी जी का एक हाथ से स्वागत करेंगे सभी कि है दिल्ली नोएडा के। आप छोटी ही आयु में 8 वर्ष की थी तभी आपको बाबा का परिचय मिला और बाबा की सेवा में अपने आपको समर्पित किए और आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन हैं और ORC के आप डायरेक्टर हैं। तो आप समय निकाल के हम सबके बीच में आए और अभी अभी हमारा क्लास लेंगे और वो टॉपिक है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करें, कि कैसे हम लौकिक परिवार में रहते उसको अलौकिक में बनाए। तो आज दीदी जी इसके पर पूरा प्रकाश डालेंगे। तो आशा दीदी जी आपका क्लास लें। ओम शांति।
ओम शांति। Good morning. Rainy morning. Rains है ना, यहाँ है बारिश हो रही है। दिल्ली तो सूखी पड़ी है। दिल्ली में कम वर्षा है, कल थोड़ी हो रही थी, कम वर्षा है। अच्छा, सब फ्रेश बैठे या थोड़ी एक्सरसाइज करनी है? करनी है? कर लो भाई, खड़े हो जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेच कर लीजिए। पंजों के बल पे खड़े हो जाओ। हाँ, और दोनों हाथ ले जाओ आकाश को छुए और धरती से जोर से दबाना। धरती को दबाना। अभी थोड़ा सा और मुड़ लीजिए। हाँ जी, गुड। थोड़ी लेफ्ट राइट कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। दो चार तालियां भी बजा लीजिए। ओके, अब ऐसा नहीं कि हम लोग स्टैग्नेट हो गए, परंतु एनर्जी फ्लो सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड भी सर्कुलेट हो जाता है, एनर्जी भी फ्लो करती है। मैं सोच के आई थी, मैं पूछूंगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार के तो पूछे। जी, गुण और शक्ति में क्या अंतर है? और क्रोध ठीक है, और कुछ? हाँ जी, दृढ़ता नहीं आती है। और कोई क्वेश्चन? कोई
Thank you.
चलता नहीं है माइंड, क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। आई विल आंसर तुम। एकाग्रता की पहचान एकाग्र है। व्यर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता। व्यर्थ पर नियंत्रण दूसरा क्या बताए? भोजन आदि की। ओके, तो हम लोग एक एक प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहली बात जो टॉपिक बताया गया था उस विषय में है कि लौकिक को अलौकिक में कैसे बदलना है। अगर आप सच्चाई से ज्ञान के आधार से सोचेंगे तो चेक यह करना है कि ये मेरा नया जन्म है। नया जन्म है, पुराना खत्म हुआ। तब तो मैं ब्राह्मण हूं, तब तो मुझे ये संकल्प आता है कि मैं लौकिक को कैसे अलौकिक में बदलूं। तो पहली बात जो मुझे पक्की करनी है वो ये है कि मैं अलौकिक हूं। मर जीवा हूं, नया जन्म है, तभी ये क्वेश्चन मेरे सामने है। अब लौकिक में आप जब अलौकिक में स्थित हैं और तब आप लौकिक को देखते हैं तो आपको अथॉरिटी मिलती है। लौकिक को अलौकिक में बदलना तो लौकिक को अथॉरिटी है। लौकिक प्रधान हो गया और अलौकिक सेकेंडरी हो गया। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी प्राथमिकता हमारा नया ब्राह्मण जन्म होता है। और ब्राह्मण जन्म में बाबा ने जो धारणा हम बच्चों को बताई, जिस आधार से हम ब्राह्मण कहलाते हैं, हम कदापि उस धारणा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं है। सीधी सी बात है ना। तो जब मुझे ये पता है कि मैं अलौकिक ब्राह्मण आत्मा हूं, अब मुझे लौकिक को उस दृष्टिकोण से देखना है। और उस दृष्टिकोण से देखते हुए अब आप उसे चलाओ तो आपका ऑटोमेटिकली सारा लौकिक अलौकिक में बदल जाएगा। सारा लौकिक अलौकिक में बदल जाएगा। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम लौकिक में रह करके स्वयं को अलौकिक बनाना चाहते हैं। लॉलेस वर्ल्ड में हम लॉ पर चलना चाहते हैं तो मुश्किल आएगा। पग पग पर परीक्षा और टेस्ट आएंगे। लेकिन ये मेरा डिसीजन है, मैं अलौकिक। जब मैं कोई भी कार्य देखती हूँ, चाहे अपने बाल बच्चों का देखती हूँ, चाहे अपने कार्य व्यवहार का देखती हूँ, तो मेरे मन और बुद्धि में ये बात बसती है कि मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। लौकिक को, अपने बाल बच्चों को अगर मैं अलौकिक नहीं बना पा रही हूँ, हर्जा नहीं, मेरा रोल तो उनके प्रति अलौकिक हो। उस कार्य व्यवहार में मुझे तीन बातें चेक करनी होती है। तीनों का विस्तार है, अच्छा विस्तार है, पूरा डिटेल का क्लास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको तीन चीजें वो थ्रो कर रही हूं जिस आधार से आप अपने लौकिक में अलौकिकता से विजय प्राप्त कर सकेंगे, अलौकिक रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। पहली बात चेक करें, चाहे वो आपका बाबा दो शब्द कहता है, अटेंशन और चेकिंग, दो शब्द कहता है, बच्चे अटेंशन भी रखो और चेक भी करो। क्या अटेंशन रखना है और क्या चेक करना है? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की भी किसी ने बात कही, एक होता है अवेयरनेस, जो मेरी कॉन्शियस माइंड की बात है, और एक होता है अनजानपन में, आपको उसका पता भी नहीं लगता लेकिन आप वो कार्य कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, मेरा ऐसा लक्ष्य नहीं था। वो कहां से आ रहे हैं? वो सब कॉन्शियस अभिचेतन से, संस्कार रूप में जो चीजें बस रही हैं, जो एक जन्म की नहीं है, अनेकानेक जन्मों की है, वो बोल रही है मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा। तो बाबा कहता है कि जब आप अलौकिक स्वरूप में होंगे तो आपका हर आत्मा के प्रति देखना, सोचना, बोलना बदल जाएगा। तीन बातें जो मैं बताने जा रही थी, पहली बात चेक करिए, आसक्ति तो नहीं है। आसक्ति कई प्रकार की है, दूसरा आसक्ति में खान पान ये सब सब कुछ तो आता ही है, लेकिन क्या मेरी अपने संस्कारों के साथ भी आसक्ति तो नहीं है? ये सूक्ष्म। दूसरा है तृष्णा, क्या कहते हैं, आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। तृष्णा क्या चीज है? तृष्णा खान पान पहनने ओढ़ने की नहीं है, तृष्णा बहुत गहरी है, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, ये मेरा है, पजेसिवनेस हो, ये सब बातें तृष्णा में आती है। उन चीजों का विस्तार करना, संचय करना, सब तृष्णा है। बुजुर्ग होते जाते हैं ये तृष्णा बढ़ती जाती है। लोग मुझे पूछें, मेरे बड़ों के पास ये बात जानी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, ये सब तृष्णा है। क्योंकि लाइफ में काम किया हुआ होता है ना, अनासक्त वृत्ति से नहीं किया हुआ होता है, ट्रस्टी रूप से नहीं किया हुआ होता है, मेरेपन के भाव से और मैंपन के भाव से किया हुआ होता है, तो तृष्णा में परिणत हो जाता है। तीसरा है लगाव। घर गृहस्थ में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हर घड़ी का उठना बैठना है, आप कितना ही कहो हमारा उनसे लगाव नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, इसको बहुत गहरे रीति से चेक करना है। लगाव होता है और उसका पता तब लगता है जब परीक्षा आती। ये मैंने पेपर देते देखा दो माताओं को, जीते जी अपने पति का बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी, रिजेक्ट करती थी, हर बात में उसको रिजेक्ट करती थी। ये सच्ची घटना बता रही हूं मैं आपको। पति ने जब शरीर छोड़ दिया परिस्थिति को उस समय बहुत अच्छा पार कर लिया, उस समय पेपर में पास हो गई, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया एक महीने के बाद फोन करती है, दीदी मुझे क्या हो गया है, मुझे याद भुलाई नहीं जाती, रोना आता है, क्या हो गया है मुझे। और थी वो ज्ञानी तो आत्मा, अंदर में ये चेक करना है मेरे संस्कार में वो बीज है लगाव का, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूं, इग्नोर कर रही हूं, एक्सेप्ट नहीं करती हूं। इस कारण दुख होता, उस समय दुख होता है। ऐसे दूसरी माता अपने पति का नाम लेके कहती थी, दीदी मेरे को सब जगह वही दिखता है, भूलता नहीं। ये है लगाव, गहरा लगाव। और ये बात आप सच माने, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम सारा दिन बिताते हैं, हमारा उनके साथ लगाव हो ही जाता है। इसके आगे काफी डिटेल है। लगाव होगा तो पक्षपात होगा, पक्षपात होगा तो अन्याय होगा, अन्याय होगा तो और उसके आगे गाड़ी जाएगी। छोटी चीज नहीं है। क्यों बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे इनसे मुक्त रहो, लगाव से मुक्त रहो, क्यों कहता है? उसकी पूरी डीप फिलॉसफी है। लगाव जरूरी नहीं है कुमार कुमारियों का ही होता है, गहरा है, वो चेक करना होगा। भट्टी के अंदर आज की क्लास का ये होमवर्क, अपने अंदर जाकर के चेक करिए, ये तीनों बातें, आसक्ति, तृष्णा और लगाव, ये तीन क्वेश्चन है। इनमें मैं अपने आप को कितने मार्क्स देती हूं? हर कोई आज नोट करना, चेकिंग करना, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हमारी दैनिक लाइफ से, अलौकिकता में क्या है? ये शरीर नहीं, आत्मा है, यही तो है ना। अभी एक मुरली आने वाली है बाबा की, यज्ञ में शुरू में बाबा अभ्यास कराते थे और गुलजार दादी ने हम बच्चों को कहा हुआ है कि ये अभ्यास आजकल किसी से पूछता नहीं है। दादी ने ये शब्द यूज किया, पूछता नहीं माना निभा नहीं पाते, करते नहीं है। बाबा ने शुरू में अपने आप को टोटल अलौकिक बनाने में कौन सा अभ्यास किया? मैं आत्मा हूं, पुट्टू आत्मा है, ब्रज आत्मा है, आत्मा आत्मा आत्मा। मेरापन निकल गया ना। बाबा को अपनी लौकिक पत्नी पत्नी नजर नहीं आती थी, इतना अंतर आ गया कि जसोदा माता को बाबा साकार अपने युगल रूप में नजर नहीं आता था, पिता रूप में नजर आता था। जसोदा माता को तो हमने देखा है, कितना परिवर्तन, किससे? वृत्ति में। और बाबा एक दूसरे को भी यही कहता था, बच्चे आत्मा हो, आत्मा हो, मैं निज आत्मा, मेरी निज आत्मा, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। ये आत्मिक दृष्टि, ये आत्मिक भाव हमारी अन्य बातों में परिवर्तन ले आता है। आत्मा से ये भावार्थ नहीं है कि मैं आत्मा हूं तो आपके मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा को देखती रहूं, नहीं। आत्मिक भाव अर्थात आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा का जो स्वभाव है, वो मुझे नेचुरल रूप में दिखाई दे और नजर आए। शुरू शुरू में तो हर कोई एक दूसरे को आत्मा रूप से देखते थे, बोल भी देते थे, भाई जी और बहन जी। फिर समझ में आया कि नहीं भाई, बैलेंस रखना है, नहीं तो डिससर्विस होती है। शुरू में जब सेवाएं शुरू हुई तो पता ही नहीं था। युगल जो थे, अच्छी बात समझते थे। कानपुर में एक फंक्शन रखा जिसमें युगलों ने एक दूसरे को राखी बांधी और वो शोर मच गया, बहुत शोर मच गया। वो तो बाद में ठीक होता गया, सेवा करते 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 ठीक है, लेकिन शुरू की सेवा के यही स्वरूप थे। तो तो बाबा ने कहा बच्चे ये थोड़ी है जरूर जताना है आपको, आपको तो अपने मन और वृत्ति में रखना है ना। क्या सच में दूसरी बात लेती हूं, आत्मा दूसरा कर्म योगी जीवन है। या केवल कर्मी जीवन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, लौकिक संसार में रहते हुए बाबा ने हमें कर्म योगी जीवन बताया। कर्म योगी क्या है? कर्म योगी क्या है? अगर इतना सरल होता तो क्यों पूछती? कर्म योगी क्या है? देही अभिमानी बन के कर्म करना, निमित्त भाव से करना, तो कर्मेंद्रियों से तो करूंगी, ज्ञानेंद्रियों से थोड़ी करूंगी। आत्मा मालिक बन के कर्म करना, स्वमान में रह के करना, कर्म योगी जी। कर्म और योग का बैलेंस, और बाबा की स्मृति में रह के कार्य करना, और कर्म के बंधन में नहीं आना, ये अच्छी बात सुनाई। और हाँ, ट्रस्टी, सच बता दो ये सब याद रहता है? अब मुझे सुदर्शन चक्कर घुमाना, मुझे शंख बजाना याद रहता है? कर्म योगी अर्थात ये आपके अलौकिक और लौकिक के सब्जेक्ट से संबंधित है। कर्म योगी अर्थात मेरे कर्म ऐसे हों जो मुझे देखकर औरों का योग शिव बाबा से लग जाए। इतना सरल थोड़ी कर्म करते बाबा को याद करो, ये तो कॉमन पुराने जमाने का डेफिनेशन है। कर्म मेरे चरित्र सदृश हो, कर्म मैं कर रही हूं लेकिन मुझे कर्म करता हुआ देख करके दूसरे का योग शिव बाबा से लग जाए, ये कर्म योगी स्वाभाविक है। आपके कर्म इतने योग युक्त होंगे जो दूसरा बाबा को याद कर सकेगा। यस, मैं बाबा की लाइफ से एग्जांपल देती हूं। ब्रह्मा बाबा एक ऑफिसर, उन्हें कुंज दादी कोर्स करा रहे थे, तो उन्होंने कहा दादी ने, दादी बहुत बड़ा ऑफिसर है, बाबा बहुत बड़ा ऑफिसर है, उससे आपको मिलना है। बाबा ने कहा मिलूंगा, सुनिए कहानी। बाबा ने कहा मैं मिलूंगा, तो कोर्स संपन्न हुआ तो उन्होंने कहा बाबा अभी कोर्स उनका खत्म हुआ, अब आपको मिलना है, चलो। बाबा उस समय अनाज साफ कर रहे थे, ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रेलवे बुकिंग का ऑफिस है ना, उस वो सारा एरिया पहले खाली होता था, वरांडा होता था, वहां पर सब्जी और अनाज साफ होता था, सब्जी कटती थी, हम लोग खाना भी वहीं खाते थे धरती पर बैठ के। तो बाबा वहां अनाज साफ कर रहे थे, तो कुंज दादी आए, बाबा चलो वो ऑफिसर आया है, आपको उससे मिलना है। हाँ बच्ची उसको यहीं ले आओ। कुंज दादी कहती बाबा यहाँ पे कैसे, बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैं कहता हूं ना यहाँ ले आओ। बाबा वो क्या समझेगा, इतना बड़ा ऑफिसर कि इनका बाबा ऐसा है। मैंने बाबा आपकी बहुत महिमा की है, आप अपने ऑफिस में चल के मिलो। बच्ची मैंने कह दिया ना यहाँ लेके आओ। बाबा से कौन आर्गुमेंट करे। कुंज दादी उस ऑफिसर को लेके आए, उसने क्या देखा, बाबा अनाज साफ कर रहा है, तल्लीन। वो आके खड़ा होता है, कुंज दादी साथ में है, बाबा अनाज साफ कर रहे हैं, और जो बाबा की दृष्टि उस पर पड़ती है उसे विष्णु का साक्षात्कार हो जाता है। वो बाबा के चरणों पर गिर पड़ता है, ये साधारण नहीं है। दूसरा, आप कहेंगे भाई वो तो बाबा था, बाबा ने उनको साक्षात्कार कराना था, करा दिया। अब आपको मैं गुलजार दादी का बताती हूं। अगर आप दादी को कभी ऑब्जर्व करो, साधारण कर्म करती, मेरा तो भाग्य रहा है मैं दादी के साथ दादी के कमरे में रहती रही हूं 20 साल दादी के साथ, तो दादी को मैंने बहुत क्लोज से देखा है। साधारण कर्म करती है, सिलाई कर रही है, भोजन कर रही है। दादी को आप भोजन करते ऑब्जर्व करेंगे, इतनी अविरच, अविरच माना अनासक्त, जैसे शरीर को पेट्रोल दे रही है। गाड़ी को पेट्रोल देते हैं ना, शरीर को भोजन दे रही है, बिल्कुल ये गाड़ी अलग है और दादी भोजन कर रहा है। बाबा की याद है, दादी को देख करके बाबा की याद आती है। ऐसे ही और भी कई हमारी मनोहर दादी थे, हम ऐसे कर्म करें। कर्म में एक होता है लिप्त होना, एक होता है कर्म न्यारे होके करना, एक होता है कर्म निमित्त बन करके करना, एक होता है कर्म अनासक्त वृत्ति से करना, कर्म ट्रस्टी होके करना। हर कर्म की अपनी विशेषता, कर्म योग युक्त स्थिति में करना। और आपको एग्जाम्पल देते, हम लोग जब मधुबन में भोजन बनाते थे, मधुबन में हमने खाना भी खूब बनाया, रोटियां भी खूब बनाई, खिलाई भी हैं, खाना खिलाने और बनाने की ड्यूटी होती थी। तो किचन में हम कन्याए थे, जोर जोर से वो कढ़ाई में चलाना करना, जितना होता, आजकल तो बहुत बड़े बड़े देगड़े होते हैं, उन दिनों में इतने नहीं होते थे, बड़े थोड़े लोग होते थे। तो दादी राउंड पे आती थी, जब वो देखते थे हम लोग खूब उमंग उत्साह से जंप करते करते अपना काम कर रहे हैं, तो दादी आके सीधा कहती थी, शिव बाबा यार एक हलवा बनाना है। हलवा मैं कैसे बना रही हूं, योग युक्त स्थिति में है, या हलवा बना रही हूं इस स्मृति में है, दोनों में अंतर एकदम फर्क पड़ जाएगा, एकदम फर्क पड़ जाएगा। अब आइए व्यवहार में, आपके लौकिक में व्यवहार भी बहुत है। एक फॉर्मूला बाबा ने हम बच्चों को बताया है, जहां हमारे अकाउंट बनते हैं एक्स्ट्रा, वहां हमें अपने आप को विड्रॉ करना है, और जहां हमारे अकाउंट क्लियर होते हैं वो हमको करनी है। उदाहरण के रूप से कन्या की शादी करनी है तो करनी है, माता पिता को ये होता है, करनी है, लेकिन आप किस रूप से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। शौक से या एक कर्तव्य निभाने के हिसाब से? मैं ये नहीं कहती कर्तव्य निभाने के हिसाब से करो तो ऐसे ही कर दो, नहीं, जो आपका स्टेटस है जैसा है आप वैसे, आपकी मानसिक वृत्ति क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। हम लोग स्कूल पढ़ते थे, माता पिता ज्ञान में थे, स्कूल में फ्रेंड्स होती हैं, उनकी होते हैं भाई बहने होते हैं, किसकी शादी होती है, तो मेरे फ्रेंड की, हम लोग का ग्रुप था, फ्रेंड की बहन की शादी थी। हम सब ने सोचा 10-10 रुपए इकट्ठे, उस समय 10 रुपए तो बहुत होते थे, 10-10 रुपए इकट्ठे करके सौगात लाएंगे। मैं घर आई, फादर को बोला मुझे 10 रुपए चाहिए। फादर ने कहा ये कन्या कभी पैसा मांगती नहीं, बात क्या है, किस लिए चाहिए? हमारी फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, उसके लिए गिफ्ट करना। फादर ने कहा अच्छा, मैं अपनी टीचर को पूछूंगा, टीचर अगर कहेगी हाँ तो मैं दूंगा। अब उनकी टीचर कौन थी? जबरदस्त स्ट्रिक्ट टीचर उनकी, गंगे दादी, जो दो दादियों को बाबा ने भेजा था ना, गंगे दादी और मनोहर दादी को यज्ञ से जाओ स्थापना करो, तो गंगे दादी उसमें थी, जो फिर बाद में कानपुर में गई। तो गंगे दादी ने कहा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। घर आए, उन्होंने मेरे को कहा मैं पैसे नहीं दे सकता हूं, तुम गीता ले जाओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ, ये दे दो। अब आप सोचो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, सब लोग हंसेंगे, बच्चे को कहो तुम गीता ले जाओ उसके लिए तो वो हंसेंगे नहीं। लेकिन हम पिताजी टस से मस नहीं हुए, करना हमारी टीचर की आज्ञा है, नहीं करना। सच्ची बात है ना, ऐसे ही सोचो आप, जहां मुझे जरूरत नहीं है वहां न मुझे अपना तन लगाना चाहिए, न मन लगाना चाहिए, न धन लगाना चाहिए, न समय, न संकल्प, न संबंध। आपने उसको छोड़ना है और नए को आपने बढ़ाना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहां होनी चाहिए? नए में होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे फादर भी उतने ही स्ट्रिक्ट थे और टस से मस नहीं होते थे। वो मेरे को मिली बहन, पता है आपको, वंडरफुल बात, मेरी फ्रेंड की तो डेथ हो गई, लेकिन उसकी भाभी वो अमेरिका में है, वो यहां आई अपने ओआरसी में, तो जैसे आते हैं परिचय होता है, पूछते हैं, कहती है मेरा नाम सोएन सो भगत है, भगत तो मेरी फ्रेंड के भाई का नाम दीपक था, कहती है मैं दीपक भगत की तो वाइफ हूं। सो स्मॉल वर्ल्ड, ऐसे मुलाकात हुई। तो कहने का भाव ये है कि वो दिया वही चीज थी, फादर टच से मस नहीं हुए। ये हम लोगों को देखना, आजकल हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, विल पावर बनती है, वो बनती है अपने प्रिंसिपल्स पर चलने से। अब जितनी शक्ति है आपके अंदर उतना करोगे, नेचुरल है, जितनी शक्ति है जितना कर सकते हो उतना करो। और फिर मैंने ये देखा, जो खान पान की बात उठाई, खान पान की बात कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी बच्चे से बड़े होकर के कॉलेज में भी गए हैं, पार्टीज भी होती थी, सब कुछ होता था, हमने अपने लौकिक में भी देखा। तो आप जूस ले लो, हम लोग वीआईपी सेवा में थे, वीआईपीज ऑफर करते हैं, आज भी ऑफर करते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, हमारा आज व्रत है, व्रत है, छूट गए आप। ब्रह्मानंद रेड्डी की वाइफ थी, उसको बहुत बहनों से प्यार था, तो जब हम जाते थे हम यही कहते थे हमारा व्रत है। एक दिन उसने पकड़ लिया, उसने कहा तुम्हारा व्रत तो मंगलवार होता है ना, आज तो सोमवार है। नहीं नहीं, सोमवार को भी शिव बाबा का व्रत होता है। अपने आप को हमें लौकिक में जो बनाने की बात है, आप बनाओ, खुद बनाओ, मैं बना के सबको खिलाऊंगी, छुट्टी हो जाएगी, बस फिर क्या बात है, फिर क्या बात है, यही करना होता है। और मैं आपको बताती हूँ, लोग आपसे नाराज होंगे उस समय, थोड़े समय के बाद वो आपको मुबारक देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है जो आपने ये नियम धारण कर लिया है, वो आपको मुबारक देंगे। तो उसकी कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप आओ जो आपने कहा गुण और शक्ति का और क्रोध का। गुण जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे गुलाब है, गुलाब का एसेंस शक्ति है, ठीक है, गुलाब गुण स्वरूप है और शक्ति जो है वो एसेंस स्वरूप है। गुण अधिक मात्रा में यूज करना पड़ता है, शक्ति का उपयोग करना ही नहीं पड़ता। असली शक्तिवान वो है जिसे शक्ति का उपयोग करना ही ना पड़े। पुलिस कमिश्नर है, मिसाल देते हैं ना हम लोग, पिस्टल उसके पास होता है लेकिन पिस्टल कभी उसको चलाने की जरूरत पड़ती है, उसका स्वरूप, उसका व्यक्तित्व, अनुभव की अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। आप दादियों को देखिए, बोलने में लोग कितने अच्छे लहजे से बोलते हैं, गुण है, स्पीकिंग का गुण है। दादियां क्या करती हैं, क्या दादियों को बोलना नहीं आता? दादियों को खूब बोलना आता, दादियों के बोलने से ही हम सब पैदा हुए हैं, हम सबकी सस्टेंस उनसे ही हुई है, बाबा ने पहले उनको तैयार किया है, लेकिन उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दो शब्द बोलती है वरदानी और सब कुछ अनुभव है ना। दादियों के मंच पर प्रवेश करने से हॉल के अंदर जो खुशी की लहर आ जाती, वो क्या चीज है, उस शक्ति। बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चों के खेल देखते हैं, छोटे बच्चे आर्ग्यू भी करेंगे, एक्सप्लेनेशंस भी देंगे, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, केवल मुस्कुराते हैं, राइट, और मुस्कुरा के दो शब्द बोल करके काम को खत्म कर लेते हैं। ये है गुण और शक्ति में अंतर। गुण की पराकाष्ठा शक्ति, गुण का एसेंस अब आइए क्रोध पर। कभी कभी मैं क्लास में पूछा करती थी पांडव भवन में कि ऐसा कोई है जिसे बिल्कुल गुस्सा ना आता हो। यहां भी पूछ लेती हूं, ऐसा कोई जिसको बिल्कुल नहीं आता, किसी भी सर्कमस्टेंस में नहीं आता। एक, बिल्कुल नहीं। दो, तीन, कभी नहीं आता, जिंदगी में आया ही नहीं है। हाँ, कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं आया, खत्म किया। आओ आके सुनाओ कैसे खत्म किया। वर्षी से पैदा हुआ था। सुनाओ, वर्षी में तो गुस्सा आता है भाई। हाँ बोलो, आप भी आइए आइए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, कभी गुस्सा नहीं किया या आपने गुस्से पर विजय प्राप्त किए, अनुभवी मूर्तों से सुने ना। आइए, तीसरी भी एक बहन थी, आइए। हाँ बोलो।
ओम शांति।
शॉर्ट में बताना इतना सा। बोलो।
शुरू में बाबा का ज्ञान मिला, तब से परीक्षाएं तो आई, लेकिन उसके सूक्ष्म अंश होते थे, लेकिन उसको तुरंत चेंज हो जाता था, तुरंत मतलब इंस्टेंट चेंज होता था। और आया मतलब आया ही नहीं, बस चेंज ही हो गया वो। और जैसे कभी कभी घर में गाय कभी पैर खून देती तो इतना गुस्सा आना चाहिए था, चेंज हुआ ही नहीं। या कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंस्टेंट चेंज होते गया, कभी आया ही नहीं। बाबा यूं कहें तो पांचों विकार में पकड़, पांचों विकार। हाँ, अभी दृष्टि का थोड़ा सा पार्ट रहा है, वो हो जाएगा। ज्ञान में आने से पहले बहुत मीठा रहने का स्वभाव था हमारा, कोई कुछ बोलता था तो मीठा रहने की बहुत ज्यादा अच्छा आने की लगता था हमको, फिर जब आए तो और अच्छा अनुभव हुआ। पहले भी लोग बहुत बोलते
पहले
थे,
पहले शीतल स्वभाव का था,
पहले से ही मीठा
पहले था, लेकिन ज्ञान से उनको और बल मिला, और बल मिला। आप बताइए। शॉर्ट में बताना।
ओम शांति। देखो, ज्ञान में आने से पहले तो गुस्सा आता ही था, लेकिन जब से बाबा के बने, ये बाबा की रोज मुरलियां सुन के, साक्षीपन का पाठ, ड्रामा का पाठ, हर एक को आत्मा, फिर आत्मा भी देखना, फिर उसको भी ओरिजिनल स्वरूप में, तो अगर हम हर आत्मा हमारे को कोई गुस्सा दिला भी रही है तो हम उसका वही फाइल देखते थे, ओरिजिनल स्वरूप वाली। जब उसकी ओरिजिनल स्वरूप वाली हम फाइल देखते थे, वो सात गुण उस आत्मा के नजर आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा शांत हो जाता है, आता ही नहीं किसी के ऊपर। तो ज्ञान में मुझे 22 साल हो गए हैं।
कितने
आपसे मिली थी?
22।
हाँ जी, 22।
22 साल। अच्छा लगता है कि गुस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है,
ओम शांति।
देखिए, इसमें मुख्य बात है अटेंशन देंगे। अगर आप ये दृढ़ता लाते हैं कि मैंने इसको जीतना ही है, ठीक है, मैंने इसको जीतना ही है, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपकी अपनी विल पावर है। लेकिन वो विल पावर को ही मैंने संजो के रखना है। और जैसे आपने कहा, उबाल आ जाता है, तुरंत आता है, वो विदाउट परमिशन आता है, परमिशन लेके नहीं आता गुस्सा। इसमें अपने आप को जो शीतलता का सबक है वो आप दीजिए, बहुत समय से शीतलता का। दूसरा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसको बढ़ाएं। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूं। आप ये नहीं समझना कि मैं विजयी हूं 100%, नो, लेकिन मैं ये अटेंशन रख रही हूं कि मेरे सामने 150 भाई बहने रहते हैं, 200 और ऊपर नीचे कई प्रकार की बातें होती हैं, मेरे पास समाचार आते हैं, मैं उस समय उनको कहती हूँ बुलाओ उसको और मैं सोच में उसको ये बोलने वाली है। फिर मन में अपने आप ये संकल्प आता है, क्यों अंदर लक्ष्य रखा है, आशा तुम यही बात प्यार से भी तो कह सकती हो, यही बात तुम प्यार से भी तो कह सकती हो, ये चीज मेरी हर चीज को बदल देती है। कल मैंने सारे ओआरसी को बिठाया, सारे ओआरसी में क्लास के बाद सारा ओआरसी बैठेगा, और मैंने सोचा था 3-4 बातें हैं ये मैंने इनको बोलनी तो है। किसी ने कहा परिवर्तन नहीं होता है तो क्या करें, बोलनी तो पड़ेंगे आपको, अगर आप बोलेंगे नहीं वो चीजें और बढ़ती जाएंगी, उसके जिम्मेवार हम हैं क्योंकि हम निमित्त हैं। वही बात प्यार से कहो, प्यार से बोलो, वो थोड़ा परसेंटेज फिर कम है, गुस्सा ज्यादा है, इरिटेशन थोड़ी कम है। इरिटेशन में भी अपने आप को हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि इरिटेशन में आप अपने आप को ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। तब बाबा ने हम बच्चों को कहा है फुल स्टॉप देने की आदत डालो, आपका दिमाग कोई बात को स्वीकार नहीं कर रहा। एक तरीका है कि आप उसको थ्रेड बेयर क्लियर करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो, इससे आप अपने रिलेशंस को बिगाड़ोगे। मैंने देखा आजकल वो शक्ति ही नहीं है, बिल्कुल शक्ति नहीं है सुनने की, रिलेशंस बिगड़ जाते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं, फायदा नहीं है। जो बाबा ने हमें हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ बताई है, रहम दिल, क्षमा कर दो, भूल जाओ, फुल स्टॉप, सच में ये चीजें काम की। एक लेवल थी जो मैं इन बातों को नहीं मानती थी, मैं कहती थी नहीं, लव एंड लॉ दोनों का ही बैलेंस चाहिए। दादी कुमारका से मैंने पूछा था, बड़ी दादी से, मैंने कहा दादी आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और मैंने आपको लॉफुल रूप में भी देखा और लवफुल में भी देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों का बैलेंस चाहिए। दादी ने मुझे कर्मातीत होने से पहले कई बार दादी के साथ मेरी रू रूहान होती थी, उसमें दादी ने कहा नो ओनली लव, ओनली लव। उस समय मेरे गले से वो बात उतरी नहीं, क्योंकि लव में तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन दादी ने कहा नहीं ओनली लव। तो वो जो हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसमें ट्रूथ है, हम उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको मैंने पालन करना है, ये जब हम बुद्धि में रखेंगे तो इन चीजों से हम अपने आप को धीरे धीरे मुक्त कर लेंगे। हमारे पास भाई आते हैं, साइंटिस्ट क्लास में थे, पांडवन की क्लास की बात है, ओआरसी की नहीं। तो मैंने क्लास में पूछा जिन्होंने योग से इसको जीता है क्रोध को वो बताओ, दो ने हाथ खड़े किए, आपने भी जीता है, दो ने खड़े किए हाथ और उन्होंने बताया। मैंने पूछा पहले को गुस्सा आता था, बोलते हाँ पहले खूब आता था, लेकिन अब मैंने उसको योग से ज्ञान से जीता है। तो हम ये लक्ष्य रखते हैं कि अगर ये भाई जीत सकता है, ये आत्मा जीत सकती है, अभी जैसे ही भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, जीत सकते हैं, तो क्या हम भी कोशिश करें तो हम भी जीत जाएंगे? हाँ जी, जीत सकते हैं। ठीक है, एक ये, फिर मेरे को थोड़ा दो मिनट देंगे, कंप्लीट कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमारी किरण बहन ने कही। एडमिनिस्ट्रेशन में किरण बहन आप छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कहेगा, मूक है, शक्ति नहीं है, क्योंकि आजकल सब डर जाते हैं, बदले की भावना, ये वो कई कुछ बातें होती है। लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो आपकी ड्यूटी बनती है, उसको प्यार से कहो जरूर, कहो जरूर। आने से पहले मैं यीशु दादी के पास थी, यीशु दादी को मैंने कहा मुझे यज्ञ की ऐसी कोई बात बताओ जो कि नई हो, मुझे अच्छा लगता है यज्ञ की स्टोरीज। तो यीशु दादी ने कहा, एक आनंदी माता होती थी, वो हिंदी सिखाती थी यज्ञ में शुरू में, तो उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट लिया होगा, बोला सबको धृतराष्ट्र लिखो, धृतराष्ट्र लिखो। तो ब्रजेंद्रा दादी रमणीक थी हमारी, ब्रजेंद्रा दादी कहती है मैं कौरवों का नाम क्यों लिखूं, धृतराष्ट्र कौरव, और उसको आंखें भी नहीं थी, मैं नहीं लिखूंगी उसका नाम। अब आनंदी माता को गुस्सा आया, ये कहना नहीं मानती, तो उसने क्या किया, मार तो सकती नहीं और तो कुछ कर नहीं सकती, जाके पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ पे चढ़ गई। तो फिर मम्मा आई, फिर मम्मा ने समझाया, बताया। अब देखिए यहां पर 50% तो ये हुआ ना कि आप दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को संभाल रहे हैं। और उसके बाद फिर धीरे, बाद में तो आनंदी माता बहुत अच्छी थी, लेकिन ये चीज यीशु दादी ने अभी बताई, क्रोध से संबंधित थी। जी, इसमें हमको ये बात समझनी पड़ेगी, हर आत्मा का अपना पार्ट है। आएगा, इरिटेशन आता है, लेकिन उसकी शक्ति ही इतनी है ना, उसमें ताकत ही नहीं है करने की, तो मैं जबरदस्ती कैसे करूं, छोड़। कभी कभी जब मैं सोचती हूं तो मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूं, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी तो ऐसा मुरलियों से पता लगता है विचित्र प्रकार के संस्कारों के लोग थे, लेकिन बाबा ने कैसे डील किया उनके साथ, एक्सेप्ट किया हुआ था ना, डील किया था ना, ऐसे ही करेंगे, बाबा की मुरलियों से ही सीखेंगे, उससे लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, अटेंशन रखें तो अवश्य फल निकलेगा।
यस, ओम शांति। मेरा नाम लौकिक नाम सत्यवीर डागर, मैं रिटायर्ड एसीपी हूं दिल्ली पुलिस से।
अच्छा, सत्यवीर भाई हैं
जी। भाई
शॉर्ट में बताना।
हाँ, बहुत शॉर्ट में। 99 में मैं सीमापुरी एसएचओ होता था जब मुझे यह ज्ञान मिला, और उस समय जो मेरा स्वभाव था वो बहुत क्रोधी था, और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था और बहुत छोटी बात पर आता था, और शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको कहते हैं, और उस गुस्से में मैं पागलों जैसी हरकत करता था, और लोगों को, क्योंकि अथॉरिटी थी, मैं थाने का इंचार्ज था, ऑफ कोर्स क्रिमिनल्स पर और दूसरे लोगों पर आता था जो गलत काम करते थे, लेकिन मैं उनको मारता इतना था कि कसाई भी जानवर को ऐसे बेरहमी से नहीं काट सकता जैसे मैं इंसान को काटता था। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर कोई क्रुएल्टी के लिए गोल्ड मेडल होता तो मैं डेफिनेटली गोल्ड मेडलिस्ट होता। लेकिन जब मैं बाबा का मुझे ज्ञान मिला और ये राजयोग का अभ्यास किया, तो धीरे धीरे 4-5 साल में मैंने इस गुस्से को ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल कर लिया। और एक समय ऐसा आया, मैं प्रीत विहार में जब था, कि मैंने कम से कम पिछले 2 साल में गुस्सा नहीं किया था। हालांकि मेरा जॉब ऐसा था जहां पर ऐसी सिचुएशंस आती थी जहां थोड़ा सख्त होना पड़ता है, लेकिन मैं अपना काम खुद करने की बजाय अपने जूनियर्स को लाओ, ले जाओ इसको जाके पूछताछ करके लाओ, बजाय इसके कि मैं गुस्सा करूं या उसके साथ में कुछ थोड़ा बहुत गरम नरम करूं, तो मैं अपने दूसरों को ये काम सौंप देता था। तो मैं बहुत खुश था इस बात से कि मैंने इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन आई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, कि उस सिचुएशन में एक ये पोजीशन थी कि मैं या तो कुछ करूं और नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी खराब होगी। मेरी शिकायत ऊपर तक हो रही थी कि साहब ये बहुत लीनियंट आदमी है, कुछ करता नहीं है। और मैंने वो सारे प्रयास किए जो दूसरों से मैं कराना चाहता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो एक दिन मेरा अचानक टेम्पर लूज हो गया और मैंने तीन लोगों को अपने ऑफिस में जमीन में लिटा के लाठियों से मारा, और इतना मारा कि उनकी हड्डी पसली सब तोड़ दी। मुझे लगता था कि यही इसका इलाज है, लेकिन जब वो गुस्सा मेरा थोड़ा ठंडा हुआ और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या किया, जो तपस्या मैंने इतने सालों से की और दो साल से जिस बात को मैंने नहीं किया था, आज मैंने वो सारी कसर पूरी कर दी, तो मैं तो जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया और इस पुरुषार्थ का और ज्ञान योग का मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे को अंदर से गिलानी हुई, मुझे रोना आ गया। जब रोना आया, मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ऑफिस में मैं था, तो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ये भी था अगर मेरे को किसी ने रोते हुए देख लिया तो लोग क्या कहेंगे कि थाने का इंचार्ज रो रहा है। तो मैं वहां से दौड़ के, और मेरा रूम अटैच होता था, मैं अपने रूम में चला गया। वहां बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ था, मैं वहां मेडिटेशन करता था। मैंने अंदर से कुंडी बंद की और मैं जी भर के बाबा के सामने रोया, बहुत रोया। शायद मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी ना रोया हूं जितना मैं उस दिन रोया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी अब तक की जितनी भी कमाई थी वो सारी की सारी लुट गई, बर्बाद हो गई। जब मैं बहुत रोया और मेरे रो रो के बुरा हाल था, और बस मैं बाबा से ये कहता था, बाबा मैंने ये क्या किया, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे ऐसे आंसू पूछे, और बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये परिस्थिति ऐसी थी, तुम न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, ये इस सिचुएशन की डिमांड थी, जो किया ठीक किया, इसका अब मलाल नहीं करो, लेकिन आज के बाद किसी को हाथ नहीं उठाना। और बाबा आज से तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम यदि बाबा की याद में किसी की तरफ को तीखी दृष्टि डालोगे तो वो गोली का काम करेगी। और उसके बाद मैं तीन या चार थानों में और SHO रहा, एक बहुत डिफिकल्ट पुलिस स्टेशन जामिया था, उसमें मैं 2.5 साल रहा। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आई जो बहुत लगता था कि ये कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन बाबा की उस बात, जो वरदान बाबा ने दिया, उस याद से, बाबा की याद से, केवल दृष्टि मात्र से वो सिचुएशन कंट्रोल हो गई। और इतना डिफिकल्ट पुलिस स्टेशन जिसको दिल्ली का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, वहां मैं 2.5 साल रहा, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। और एक और बड़ी बात कि जब ये सब मैं करता था पहले, ज्ञान में आने से पहले मेरा BP हाई रहता था, मैं पहले छोटी दवाई लेता था, टेलमा 40, फिर वो कंट्रोल होना बंद हो गया तो टेलमा H लेनी शुरू कर दी। कंटिन्यूसली मेरा BP हाई रहता था, एक गोली मुझे ब्रेकफास्ट के बाद रोजाना 24 घंटे में लेनी पड़ती थी। लेकिन बाबा से ये वरदान मिलने के बाद, जहां मैंने गुस्सा नहीं किया और अपनी नौकरी भी की, वहां कुछ सालों के अभ्यास के बाद मेरा BP भी कंट्रोल हो गया, और मैं पिछले करीब 8-9 साल से BP की कोई दवाई नहीं खाता हूं, और मेरा BP 100% 120 और 80 रहता है, कभी भी चेक करें। और अब मुझे ना गुस्सा होता है, ना ये इरिटेशन जो आप कहते हैं वो होती है, मुझे कुछ नहीं होता। तो एक तरफ वो सिचुएशन थी जो एक हाईएस्ट लेवल का गुस्सा था, और आज बाबा के इस ज्ञान से, योग से, और बाबा के आशीर्वाद से, वरदान से, आज ये सिचुएशन है कि मैं कोई गोली भी नहीं खाता हूं, और मैंने बहुत डिफिकल्ट जगह पर जॉब की, और प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दिल्ली पुलिस के लिए, जो एक राष्ट्रपति का मेडल होता है, वो भी मेरे को 2014 में मिला, अच्छी सर्विसेज के लिए मेरी रिकॉग्निशन राष्ट्रपति से हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ज्ञान योग में बहुत ताकत है, और यदि आपको बाबा पे पूरा भरोसा है और आपका दृढ़ संकल्प है, तो ये गुस्सा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इतने बड़े बड़े 5 विकार खत्म होके और आप देवता बन सकते हैं, तो गुस्से को जीतना कौन सी बड़ी बात है। ओम शांति।
ठीक है, लक्ष्य रखेंगे तो अवश्य विजय मिलेगी। अच्छा जी, आपका प्रश्न था, प्रश्न ही नहीं उठता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठता बाकी माइंड डेड नहीं होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए, मंथन चलना चाहिए, प्रश्न ना हो लेकिन मंथन चल करके ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना वो जरूरी है। ओम शांति। ठीक है, ओके, ऑल क्वेश्चन आंसर्ड। ठीक है, ओके।
ओम शांति। बहुत धीरे से आवाज आ रही है आप सबकी। दीदी जी ने आप सभी को बहुत प्रेस किया लौकिक से अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें, प्रकाश डाला। हम सब दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
शुक्रिया क्यों, ये सब फॉर्मेलिटीज है, कोई शुक्र, हम तो सेवाधारी हैं, सेवा ही करेंगे ना।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दीदी जब आत्माओं को सुकून मिलता है तो कहें या ना कहें दिल से शुक्रिया तो निकलता ही है।
चलो, आप सबसे हमारी भी मुलाकात हो गई। नहीं, अपना परिवार है, जहां भी जाएंगे वाइट ड्रेस होती है, बैज लगा होता है, लगता भी अपना है। ठीक है,
तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी।